हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 153। जय ने उसे एक तरह से वार्निंग देते हुए कहा। मीरा ने एकदम मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, सीरियसली, तुम्हें ऐसा लगता है? क्या मेरे पास करोड़ों की ज्वेलरी है और मैंने चोरी में किसी की भी मदद की है? क्या सच में मुझे जेल जाना पड़ेगा? इतना बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो काफी घबरा गई थी। जय ने उसे इस तरह देखकर कहा, ऐसा चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर तुम किसी भी चीज में शामिल नहीं हो तो मैं तुम्हें श्योरिटी देता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम्हें पुलिस स्टेशन भी नहीं आना पड़ेगा। बट अगर तुम किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो और ये सब कोई इंसिडेंट हो, जिसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं मुझे। मीरा फिर से परेशान होती हुई बोली, क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? तुम्हें अभी भी मुझ पर शक है क्या? इतने सारे सवाल पूछने के बाद भी तुम्हारा शक नहीं गया? मैंने तो सब कुछ सच बताया है तुम्हें। जय ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। जय की बात सुनकर मीरा के चेहरे पर टेंशन नजर आ रही थी। वो समझ गई थी कि जय को अभी पूरी तरह से उसकी बात पर भरोसा नहीं है और वो अभी भी उस पर शक कर रहा है, इसीलिए उसने अपनी सफाई में आगे कुछ नहीं कहा। मीरा को चुप देखकर उसकी तरफ देखते हुए जय कुछ सोचता रहा। आखिरकार उसने उससे पूछा, वैसे मीरा, तुम और करण, तुम दोनों का कॉलेज से हो ना? जय के इस सवाल पर मीरा कन्फ्यूज होती हुई बोली, कॉलेज? एक मिनट, तुम ही अचानक से मेरे कॉलेज के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या इसका भी इस केस से कोई लेना देना है? और वैसे भी कॉलेज कम्प्लीट हुए तो 4 साल हो गए हैं। मीरा की इस बात पर जय ने उसकी तरफ देखकर मन ही मन कहा, सीधा जवाब नहीं दे सकती क्या ये लड़कियां किसी भी बात का? खैर, मैं ही बेवकूफ हूँ, मैंने पूछा ही क्यों? इतना बोलते हुए वो मन में खुद को डांट रहा था, तभी उसे पीछे से करण और शिविका आते हुए नजर आए। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और एक दूसरे की तरफ देखते हुए चल रहे थे, शायद कुछ बात भी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही शिविका की नज़र सामने खड़े जय और मीरा पर पड़ी, उसने धीरे से करण का हाथ छोड़ दिया। शिविका की इस तरह अचानक हाथ छोड़ देने पर करण को थोड़ा बुरा लगा। उसने काफी डिसअपॉइंटेड चेहरे के साथ एक नज़र उठाकर शिविका की तरफ देखा, लेकिन शिविका का ध्यान करण की तरफ नहीं था, वो अपने सामने देख रही थी। सामने खड़ी मीरा की पीठ उन दोनों की तरफ थी, इसीलिए वो उन्हें आते हुए नहीं देख पाई। लेकिन जय उसके सामने खड़ा था और उसने उन्हें देख लिया। जैसे ही शिविका ने उसे अपनी तरफ देखते हुए नोटिस किया, उसने तुरंत करण का हाथ छोड़ा और उससे थोड़ा दूर होकर चलने लगी, एकदम सीरियस फेस के साथ। फिर जब करण ने भी उसकी तरफ देखा तो वो समझ गया कि शिविका ने उसका हाथ क्यों छोड़ा। वहीं उन दोनों की तरफ देखते हुए जय ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मीरा कन्फ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगी और बोली, हे, कहाँ देख रहे हो? और उसकी नजरों का पीछा करते हुए वो खुद पीछे मुड़ी। उसने देखा कि करण और शिविका अब तक वहां आ चुके थे और जय उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। तभी करण ने वहां आते हुए कहा, बात हो गई तुम दोनों की, चलो हमें एक जगह और चलना है। करण की इस बात पर जय ने कहा, तुम लोग जाओ, मुझे पहले कुछ और पता करना है। जय की बात सुनकर शिविका बोली, सीरियसली, ये केस भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या कुछ अभी तुम्हारे लिए? मुझे तो लगा था तुम अभी फिलहाल इस पर ही काम कर रहे हो। शिविका का जवाब देते हुए जय ने कहा, हाँ, इस केस पर ही काम कर रहा हूँ मैं अभी, और उससे रिलेटेड ही पता करना है कुछ। जय की बात सुनकर शिविका बोली, अच्छा फिर ठीक है, जाओ, लेकिन जो भी पता चले बता देना मुझे। और अपना वादा याद है ना तुम्हें, कल सुबह से पहले? शिविका ने उसे इस बारे में याद दिलाया। जय ने धीरे से अपना सिर हिलाकर कहा, हाँ हाँ मुझे याद है, और इतना समझ लो कि मैं इन सब के बिल्कुल क्लोज हूँ। बस इस लड़की ने मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, उसने मीरा की तरफ इशारा करते हुए कहा। मीरा ने अपना मुंह खोलकर हैरानी के साथ उसकी तरफ देखा और बोली, मैंने क्या किया भला आप? मीरा की बात सुनकर करण आगे आते हुए जय से पूछा, अच्छा तो मीरा पर जो भी डाउट थे तुम्हें, वो सारे क्लियर हो गए हैं क्या? करण के इस सवाल पर जय ने ऊपर से नीचे तक मीरा को एक नजर देखा और फिर बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से बोला, सारे तो नहीं, लेकिन सारे तो नहीं। मीरा ने अपने मुंह में ही बुदबुदाते हुए उसकी बात रिपीट की। उसकी आवाज सुनते हुए जय ने उसकी तरफ देखा। फिर मीरा ने नॉर्मल आवाज में पूछा, क्या लेकिन? अब आखिर क्या बाकी रह गया है, सच बताओ, तो मुझे पकड़कर जेल में तो नहीं बंद करने वाले हो ना? मीरा ने इस बार काफी ड्रामेटिक अंदाज में डरे हुए चेहरे के साथ ये पूछा। अब तक वो ये बात समझ चुकी थी कि जय उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा और उसे उस पर विश्वास था। उसकी ये बात सुनकर जय ने अपने सनग्लासेस निकालकर चेहरे पर लगाते हुए बेबसी से अपना सिर हिलाया। बाकी सबने इस बात पर हल्का सा मुस्कुराया। जय वहां से अपनी बाइक की तरफ बढ़ते हुए बोला, बाद में मिलते हैं। इतना बोलकर जय सबसे पहले वहां से चला गया। फिर मीरा, शिविका के साथ ही करण भी शिविका की कार में वहां से निकल गया। शाम का वक्त, वृंदा मैनसन। संडे को समर अपने कोचिंग सेंटर नहीं जाता, इसीलिए संडे को वो ऋषभ के घर उसे कोचिंग देने के लिए भी नहीं आता। आज मंडे को वो आया तो उसने देखा कि ऋषभ बहुत ही आराम से अपने बेड पर लेटा हुआ सो रहा था। उसे इस तरह पढ़ाई के टाइम पर सोते देखकर समर ने पहले तो बेबसी से अपना सिर हिलाया, फिर अपने आप से बात करते हुए बोला,
क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं अपना? एकदम सही कहा था इसके पापा ने, किसी काम का नहीं है ये लड़का, एकदम नालायक। इतना बोलते हुए समर ने ऋषभ की तरफ देखा, फिर उसे अपनी बात कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगी। उसे ऋषभ के लिए थोड़ा बुरा लगा, ये सोचकर कि वो भी उसे क्यों इस तरह देख रहा है जैसे उसके पापा देखते हैं, और इसी वजह से उसकी अपने पापा से नहीं बनती। सब कुछ सोचकर समर थोड़ा गिरा हुआ महसूस करने लगा। फिर उसने उसे धीरे से आवाज लगाई, ऋषभ, ऋषभ उठो, ये कोई टाइम है क्या सोने का? प्लीज प्लीज बस दो मिनट और, मैं बस अभी सोया हूँ। इतना बोलते हुए ऋषभ ने साइड में पड़ा एक तकिया उठाकर अपने मुंह पर रख लिया और दूसरी तरफ करवट घूम गया। उसका उठने का कोई मूड नहीं लग रहा था। समर ने बेबसी से अपना सिर हिलाया, उसे समझ नहीं आया कि ऋषभ को नींद से जगाने के लिए वो क्या करे, तो वो इधर उधर देखने लगा। तभी उसे बेड के साइड में रखा हुआ पानी का ग्लास नजर आया। वो धीरे से उस साइड टेबल की तरफ बढ़ा, वहां से पानी का ग्लास उठाकर अपने हाथ में लिया और इस बार थोड़ी तेज आवाज में बोला, ऋषभ देखो अभी भी टाइम है, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, उठ जाओ नहीं तो। ऋषभ की नींद अब तक खुल चुकी थी, वो समर की आवाज भी अच्छी तरह से पहचानता था। उसके इस तरह बोलने पर ऋषभ के चेहरे पर सोते हुए भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसने अपना चेहरा तकिए से ढक रखा था तो समर उसे मुस्कुराते हुए नहीं देख पाया। ऋषभ जानबूझकर समर को परेशान करने के लिए ये कर रहा था, इसीलिए समर की वार्निंग सुनने के बाद भी ऋषभ अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिला। उसी तरह बेड पर आंखें बंद करके लेटे हुए ऋषभ बोला, नहीं तो क्या करोगे? ये बात उसने जानबूझकर थोड़ी सी नींद भरी आवाज में बोली, जिससे समर को लगे कि वो काफी नींद में है और इसीलिए उठ नहीं रहा है। उसकी आवाज सुनकर समर आगे बढ़ते हुए बोला, ठीक है, बहुत ज्यादा नींद आ रही है ना तुम्हें, रुको तुम, मेरे पास इलाज है तुम्हारी नींद भगाने का।
इतना बोलते हुए समर अपनी जगह से थोड़ा आगे बढ़कर ऋषभ के सिर के पास आया। उसने उस गिलास से अपने दूसरे हाथ में थोड़ा सा पानी लिया और उसके ऊपर पानी की छींटे डालने लगा, लेकिन वो पानी की छींटे बेड पर लेटे हुए ऋषभ के चेहरे पर नहीं बल्कि तकिए पर पड़ी। इसकी वजह से ऋषभ पर कोई असर नहीं हुआ और वो अभी भी पहले की तरह लेटा हुआ था, या फिर ये कह लो कि वो बस समर को परेशान करने के लिए सोने का नाटक कर रहा था। उसे अपनी जगह पर पहले की तरह लेटे हुए देखकर समर अपने मुंह में ही बुदबुदाया, हद है ये लड़का भी, क्या करूं मैं इसका। उसकी बात सुनकर फिर से ऋषभ बोला, बहुत कुछ कर सकते हो अगर चाहो तो। और उसकी ये बात सुनकर समर समझ गया कि वो सो नहीं रहा है, सिर्फ सोने का नाटक कर रहा है। इसलिए समर ने भी उसे उसी के तरीके से जवाब देने का सोचा और बोला, ठीक है अभी करता हूँ। इतना बोलते हुए समर ने फिर से वो पानी का गिलास अपने हाथ में लिया। आगे आते हुए उसने साइड से उसके पूरे चेहरे पर ही वो पानी का गिलास पलट दिया। ऋषभ को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, वो समर की तरफ देख भी नहीं रहा था। एकदम से ही उसके ऊपर पूरा पानी गिरा तो उसने तकिया अपने चेहरे से हटाकर दूर फेंक दिया और उठकर आधा बैठते हुए बोला, व्हाट द हेल। उसे इस तरह देखकर उसके सामने खड़ा समर हंसते हुए बोला, अब हेल हो या हेवन, लेकिन तुमने खुद ही चूज किया है। समर को इस तरह हंसते हुए देख ऋषभ अपनी जगह से आगे आता हुआ बोला, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें मुझे इस तरह से भीग कर, रुको तुम। इससे पहले समर कुछ बोल पाता या वहां से पीछे हट पाता, ऋषभ ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर बेड पर खींच लिया और समर एकदम ही उसके ऊपर गिर गया। और जैसे ही समर ऋषभ के ऊपर आया, उन दोनों के चेहरे एकदम नजदीक हो गए। ऋषभ समर की आंखों में ही देख रहा था, जबकि समर थोड़ा सदमे में लग रहा था। उसे समझ नहीं आया कि ऐसे एकदम से क्या हुआ, लेकिन उन दोनों के चेहरे आमने सामने थे और समर की बॉडी ऋषभ के ऊपर थी और उसका एक हाथ अभी भी ऋषभ ने पकड़ा हुआ था। ऐसी पोजिशन में समर आज तक किसी के साथ भी नहीं रहा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, क्योंकि एक लड़के के इतना नजदीक उसे अनकम्फर्टेबल फील करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा कुछ भी फील नहीं कर रहा था। जबकि ऋषभ की नजदीकी और उसका इस तरह देखना उसके अंदर एक अलग ही नया एहसास पैदा कर रहे थे, और वहीं ऋषभ तो समर की आंखों में एकदम खोया हुआ उसे देख रहा था। क्रमशः